الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو کافی لمبے گیپ کے بعد الحمدللہ آج ہماری مجالس پھر سے شروع ہوئی ہیں, تو اس وجہ سے ویسے بھی ہم ریکیپ کیا کرتے تھے ہر مجلس میں پچھلے مضمون کا, کیونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اس وقت, تو اب تو لمبے گیپ کی وجہ سے شاید زیادہ ریکیپ کرنے کی ضرورت پیش آئے, لیکن دیکھتے ہیں. تو جو مضمون چل رہا ہے پچھلی کم از کم 6 مجالس سے, وہ ایک بلکہ 2 آرٹیکلز کے اوپر مبنی ہے. ایک آرٹیکل تو ایک ویسٹرن انٹلیکچوئل نے, نان مسلم برائن بیڈم اس کا نام ہے, اس نے لکھا اسلام اور ویسٹ کے بارے میں کہ جی ان دونوں کے درمیان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ ہے, دا نیکسٹ وار دے سے, کچھ کہتے ہیں کہ جی اگلی جنگ جو ہے وہ مغرب اور اسلام کے درمیان ہوگی. لیکن اس نے اپنا ایک انالیسس پیش کیا اور اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی جنگ ہو, بلکہ ہم اس کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ایک نقطہ اس نے لکھا جو کہ آج ہی آج دوبارہ اس مضمون کو پڑھ رہا تھا, تو یہ نقطہ جو ہے وہ بہت زیادہ کھل کر کے اجاگر ہو کر کے سامنے آیا اس کے اس آرٹیکل میں. اس نے لکھا تھا کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ دونوں تہذیبیں مغرب اور اسلام یہ دونوں اپنے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کر لیں, سینسیبل ہینڈلنگ بائی بوتھ سائڈس, ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے یہ ہینڈل کرنا شروع کر دیں اور کچھ ری ایگزامینیشن کر لیں بائی بوتھ سائڈس of their present ideas about the world. تو ری ایگزامینیشن کر لیں کہ جی کس طریقے سے وہ دنیا کو دیکھتی ہیں اور کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو ہینڈل کرتی ہیں, تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. پھر اس نے آگے لکھا تھا کہ ان پرٹیکولر, یعنی خصوصی طور پر, مسلمز ول نیڈ ٹو فائنڈ اے وے, مسلمانوں کو ایک راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے of adjusting their habits, اپنے طور طریقوں کو اپنی عادتوں کو بدلنے کی راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ٹو 3 اسپیسیفک ریکوائرمنٹس آف ماڈرن لائف, آج کل کے 21ویں صدی 20ویں صدی کے زمانے کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق 3 جو خاص ضروریات ہیں, اپنے ہیبٹس کو ان کے مطابق چینج کر لیں. اس کے بعد اس نے نقطہ لکھا تھا کہ دیر از نو فیٹل آبسٹیکل ٹو دس, یعنی ان اس ری ایگزامینیشن میں اور اس سینسیبل ہینڈلنگ میں اور مسلمانوں کو اپنی ہیبٹس کو چینج کر لینے میں, ایڈجسٹ کر لینے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. فیٹل کہتے ہیں بالکل جان لیوا, کوئی جان لیوا رکاوٹ کوئی تھوڑی ہے اس کے اندر, آپ کی جان کی تھوڑی جاتی ہے اگر آپ تھوڑی سی تبدیلیاں لے کر کے آ جائیں. پھر کہتا ہے نتھنگ ان دا ایسنشلز آف ایدر سیولائزیشن, نتھنگ, یہ ہے نقطہ اصل میں, نتھنگ ان دا ایسنشلز آف ایدر سیولائزیشن ٹو میک ہارمنی امپاسبل. دونوں سیولائزیشنز کی جو एसेंशियल्स हैं, जो जरूरी तरीन चीजें हैं, लाजमी बातें हैं, उन दोनों में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो के हार्मनी को यानी एक दूसरे के साथ राजी मर्जी वाली जिंदगी गुजारने को रोक सकें। तो ये जो जुमला है ना, इसका मतलब क्या है? इस जुमले के अंदर एक ऐसी बात छुपी हुई है जो के एक अच्छी बात भी है इसके अंदर, कि इसने अपने मजमून के अंदर बड़ी गहरी बातें करी हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से ना इसने इस्लाम को प्रेजेंट किया है और इस्लाम की हकानियत को भी, और इस्लाम में जिस तरीके से मुसलमान दोबारा से दीन की तरफ वापस आ रहे हैं, इन सारी तो बड़ी इसमें गहराई नजर आती है। बहुत यानी हैरानी होती है कि एक गैर मुस्लिम जो है वो इस्लाम को कैसे इतना ज्यादा गहराई में जा करके समझ सकता है, और माजी को भी और हाल को भी। और लेकिन इस जुमले से इसकी इस गहराई की कमी का भी अंदाजा होता है, लेकिन बदकिस्मती से ये गहराई की कमी जो है ये खाली इसके अंदर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है। क्योंकि कहता ये है कि दोनों तहजीबों, इस्लाम और मगरब, इन दोनों तहजीबों के एसेंशियल्स के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इन दोनों को जो है ना वो आपस में राजी मर्जी की और हार्मनी की जिंदगी गुजारने से रोके। अब अगर ये बात आमाल के ऊपर रखी जाए, आमाल, बल्कि आमाल में भी कहें इबादात, तो वाकई ये सही कह रहे हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात और कलमा पढ़ लेना, तो इनमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई आपको किसी के साथ आप मिलजुल करके ना रह सकते हो। आप कलमा पढ़ें अपना, ला इलाहा इल्लल्लाह, खूब 1000 मरतबा रोजाना तस्बीह करें। कोई चीज है जो कि मगरबी तहजीब में आपको रोकती है कि नहीं आप कलमे की तस्बीह ना करें? कोई चीज है जो कि आपको कलमे की तस्बीह करने से रोकती हो? नमाज पढ़ें आप, 5 वक्त नमाज पढ़ें, तो नमाज से भी रोकने के लिए कोई चीज नहीं है। बल्कि आपने तस्वीरें भी बहुत देखी होंगी कि कोई जो है वो अमेरिका के हवाई अड्डे के ऊपर नमाज पढ़ रहा है, तो कोई बर्तानिया के जो है वो रेल के अड्डे पे नमाज पढ़ रहा है, तो कोई जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो है वो किसी और जगह पे नमाज पढ़ रहा है। अभी हम भी बड़ी नमाजें पढ़ के आए हैं, वहां पे हर जगह नमाजें पढ़ी। उसी तरीके से रोजा रखना, कौन आपको रोकता है भाई रोजा रखने से? कोई मसला है किसी को रोजा रखने में? वैसे भी किसी को पता नहीं चलता, आप कहीं भी रोजा रखें, आपके और अल्लाह के दरमियान ये इबादत है, तो काफिर तो आपको रोजा रखने से रोक ही नहीं सकता, चाहे भी तो नहीं रोक सकता। जकात देना, तो जकात देने से कौन काफिर रोकेगा भाई? वो तो खुद आगे बढ़ बढ़ करके आपसे ज्यादा बढ़ करके जकात देते हैं अपने तौर पर, जिसको चैरिटी कहते हैं, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन स्पेंडिंग एंड ऑल दैट। खूब करते हैं, आप भी करें, बहुत अच्छी बात है करें, और हज भी करें खूब जा करके। कोरोना तो एक दूसरा ही मसला है, लेकिन वैसे आप करें जितने करने आपने। तो इन दोनों सिविलाइजेशंस के दरमियान जो आमाल नजर आते हैं हमें, आमाल में फिर इससे भी आगे बढ़ जाएं, इखलाकियात में भी, बीइंग नाइस टू अदर्स, हेल्पिंग ईच अदर, और आप चैरिटी वर्क करें, आप अपने पड़ोसी की मदद करें, तो कोई आपको गोरा करनी ये तो हमारी तहजीब के खिलाफ है, आप किसी की मदद नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छे नेबर्स, आप अच्छे नेबर बन करके दिखा दें, आप लोगों को पानी पिलाएं, आप लोगों को खाना खिलाएं, तो इसके अंदर भी आप अच्छी अच्छी इमारतें बनाएं। माशाल्लाह, मेगा चर्चेस, हम उस लैंड से होके आ रहे हैं जहां पे मेगा चर्चेस होते हैं टेक्सस के अंदर, बहुत बड़े बड़े। तो अब वहां पे जगह इतनी है कि अब जब मुसलमान उधर मूव होने शुरू हुए बड़ी तादाद में, तो उन्होंने मेगा मस्जिद बनानी शुरू कर दी। माशाल्लाह, मेगा मस्जिद, ह्यूज प्रॉपर्टी, ये सेंटर बन रहा है वहां पे जी, वो इतना बड़ा सेंटर दूसरी जगह, वो इतना बड़ा सेंटर तीसरी जगह, इतने बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर्स। और ये इस्लामिक सेंटर्स जो हैं वो यूके के अंदर भी इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्पेंडिंग, पाउंड्स की स्पेंडिंग है, साथ फ्रांस के अंदर भी मौजूद हैं सारे के सारे। तो कोई मसले कोई नहीं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हाँ, हम अयोध्या मंदिर की बात नहीं कर रहे, हिंदू सिविलाइजेशन की थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे, यहां तो बात हो रही है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लाम के दरमियान क्या मसला है। तो ये तो कोई मसला ही नहीं किसी किस्म का भी। तो ये तो कहते हैं ना कि देर इज नो फेटल ऑब्स्टिकल टू दिस, कि ये मिलजुल करके राजी मर्जी के साथ एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डाल करके आप रहें, इसमें कोई मसला नहीं है। नथिंग इन द एसेंशियल्स ऑफ ईदर सिविलाइजेशन। तो इबादत में तो कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती भाई जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हो। ईद की नमाज उठा के देख लें, जुम्मे की नमाज उठा के देख लें, बल्कि हम तो जिस सेंटर में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे वहां पे सबसे ज्यादा रश जो है वो फजर और ईशा में होता था, सबसे ज्यादा रश। ईशा के अंदर तो मस्जिद पूरी भरी हुई होती थी और इतनी जबरदस्त कुरान की तिलावत कि आपको शाद और नादर कहीं पर इतनी अच्छी कुरान की तिलावत मिले। और फजर में और ईशा में दोनों में चूंकि जहरी तिलावत होती है, लोग आ रहे हैं माशाल्लाह सुनने के लिए खूब, और खूब एक्टिविटीज भी और खूब सोशल सर्विस एंड एवरीथिंग। लेकिन क्या हमारा दीन आमाल का नाम है? क्या हमारा दीन इबादात का नाम है? या इससे पहले कोई और चीज होती है जो कि इससे ज्यादा अहम है, जो कि इसकी बुनियाद है इन इबादात की, इन आमाल की? कि अगर वो है तो इन इबादात का फायदा है, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर इन इबादात का कोई फायदा नहीं है, इन आमाल का कोई फायदा नहीं है। वो होते हैं अकायद, अकायद ईमानियात। और ये जो बात है ना कि हम, हमारी प्रायोरिटीज शैतान उलट करवा देता है कि अच्छी अच्छी इबादात, अच्छे आमाल, अच्छी अखलाकियात, खिदमत खल्क, इनको पहली प्रायोरिटी पे लेके आ जाता है और अकायद को जो है वो परे कर देता है, नीचे कर देता है और बिलाखिर उनको गुम ही करने की कोशिश करता है। नीचे करने का मकसद ये नहीं होता कि वो सेकंड प्रायोरिटी पे रहे, मकसद ये होता है उसका कि उनके अकायद जो है वो बिलाखिर खत्म ही हो जाए, गुम ही हो जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी ऐसे करता था और चूंकि बहुत कामयाब हो गया था इसके अंदर, इस वजह से अकायद को बिल्कुल ही गुम कर दिया था इसने। ये जो ब्रायन बीडम ने लिखा था ना कि ये जो दीन है इसकी खसूसियत क्या है, अदर देन ऑल द अदर सिविलाइजेशंस, जो हिंदू सिविलाइजेशन हो, स्लोवाक सिविलाइजेशन हो, लैटिन अमेरिकन हो, चाइनीज हो, इन सबसे मुख्तलिफ क्या है इस चीज के अंदर, इस दीन के अंदर, इस इस्लाम के अंदर क्या चीज है? इसने लिखा था कि इस्लाम क्लेम्स टू बी एन आइडिया बेस्ड अपॉन ए ट्रांसेंडेंटल सर्टेनिटी, एक यकीन की बुनियाद पर है ये। यकीन क्या चीज होती है? ईमान, ईमान और यकीन गैब के ऊपर, ये उसकी बुनियाद पर है ये। और ये सर्टेनिटी कहां से आती है? लिखता है द सर्टेनिटी इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये सर्टेनिटी जो आती है ये कुरान से आती है इनके पास, रिवील्ड सिलेबल बाय सिलेबल टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ए डस्टी कॉर्नर ऑफ अरेबिया 400 years ago and copied down by him into the Quran। यानी फिर नबी अलैहि सलाम ने अपने सहाबा के जरिए से, आप ने खुद तो किया नहीं, सहाबा से लिखवाया फिर कुरान को। तो ये जो दीन है ये बुनियाद है कुरान के ऊपर। कुरान से पता चलता है कि जी दीन की प्रायोरिटीज क्या है, दीन में क्या चीज पहले नंबर पर है, क्या चीज दूसरे नंबर पर है, क्या चीज तीसरे नंबर पर है। तो कुरान अजीम शान की तरफ जब हम जाते हैं तो ये जो बात हुई ना कि शैतान ने ये प्रायोरिटीज अभी मैसअप नहीं करवाई है, ये हमेशा से ये काम करता रहा है। तो कुरान अज़ीम शान में अल्लाह ताला में फरमाते हैं अजअलतुम सिकायतल हाजी, क्या तुम हाजियों को पानी पिलाना, व अमारतल मस्जिदिल हरामी, और मस्जिद हराम की इमारत बनाना, उसको आबाद करना, यानी वहां पे अमाल करना जाकर के, उमरे करना, वहां पे जाकर के सजदे करना, पेशानियां टेकना, क्या तुम پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو کمن آمن باللہ تم نے بنا دیا ہے ویسا ان دونوں اعمال کو جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے والیوم الآخری اور آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا ہے مجاہدے کرنا ہے تکلیفیں اٹھانا ہے وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں لا یستعون عند اللہ اللہ کے پاس واللہ لا یہد القوم الظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جنہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹ دیا ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو ظالم کہتے ہیں ایمان کو عقائد کو جنہوں نے دوسرے نمبر پہ ڈال دیا تیسرے نمبر پہ ڈال دیا اور اعمال کو برے اعمال نہیں نیکیوں کے اعمال کو سقایت الحاج کوئی گناہ نہیں ہے کوئی اذیت پہنچانا نہیں ہے کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے پیاسے کو پانی پلا دینا بہت نیکی کا کام ہے اور عمارت المسجد اور مسجد الحرام کو آباد کرنا یہ کوئی گناہ کا کام ہے یہ کوئی بے حیائی کا کام ہے نہیں یہ بہت نیکی کے کام ہے لیکن ایمان سے بڑھ کر کے نہیں ہے یہ عقائد سے بڑھ کر کے نہیں ہے جنہوں نے ان کو عقائد سے زیادہ اہم کر دیا وہ ظالم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتے ان کو کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو جو حقیقی کامیابی ہے اس طرف اللہ تعالیٰ ان کو نہیں لے کر کے جائیں گے تو کچھ لوگ تھے اس زمانے میں کہ جنہوں نے بھی ایک مسجد بنائی تھی اور مسجد بنائی تھی کس کام سے کہتے تھے کہ جی ہم نے تو یہ مسجد بنائی ہے مسلمانوں کے فائدے کے لیے مسلمانوں کی کنوینئنس کے لیے ایک مسجد بنائی ہے اور راحت و سہولت پہنچانے کے لیے اچھا مسجد بنائی تھی انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے لیکن پروجیکٹ کیسے کرتے تھے کہ یہ تو مسلمانوں کی آسانی کے لیے بنائی ہے لیکن ان کے ارادے صحیح نہیں تھے ان کی نیت خراب تھی اب انہوں نے کرا کیا کہ اپنی اس مسجد کو ویلیڈیٹی دینے کے لیے کہ ہاں جی ہماری مسجد تو مسلمان اس کو قبول کر لیں مقبول بن جائیں مسلمانوں کے درمیان اور یہاں پر بھی لوگ آنا شروع ہو جائیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انویٹیشن دی کہ آپ آئیے اور ہماری مسجد کا افتتاح کیجیے رسی کاٹیے تو آپ آ جائیں گے نا تو ہمیں آپ کا جو ہے نا وہ ایک سٹیمپ آف اپروول مل جائے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ہماری جو بدنیتی ہے ہماری جو منافقت ہے اس کے اوپر پردہ پڑ جائے گا اور پھر ہم جو ہے وہ اپنے کام کو آرام سے کریں گے تو اس زمانے میں نبی علیہ صلی السلام کے علاوہ اور کون سی ایسی شخصیت تھی کہ جس کی سٹیمپ آف اپروول کسی کو چاہیے ہو اپنے غلط کام کو صحیح بنا کر پیش کرنے کے لیے تو اس وقت وہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا اور آج جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ رسا ہیں علماء حق ہیں آج اسی طریقے سے اپنی برائی کو اپروول دلوانے کے لیے وہ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی راز طریقے سے وہ علماء حق کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کام کے اندر ان کے ساتھ سیلفی بنوا لیں گے یہ بھی تو بنواتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کے سرگوشیاں کرتے تھے اگر اس زمانے میں موبائل فون ہوتے تو یہ سیلفی بھی بنوا رہے ہوتے ہے نا کون سی صورت ہے جس میں وہ منافقین کی سرگوشیوں کا ذکر یہ آپ سب خسر خسر آ کر بات کرتے تھے مقصد کیا تھا کہ جو مومنین دور بیٹھے ہوئے نا وہ دیکھ کر کے اچھا یہ تو بڑے رازدان ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسپیشل ٹائم دیا کرتے ہیں خصوصی ٹائم دیا کرتے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ کیسے بات ہو رہی ہے کوئی دوسرا سن بھی نہیں سکتا پرائیویسی میں بات ہو رہی ہے تو کیا مقصد ہوتا تھا مسلمانوں کے اوپر اپنا روب ڈالنا کہ ہاں ہم تو بڑے قریب ہیں ان کے آج سیلفیاں کیوں بنواتے ہیں کسی بڑے عالم مفتی تقی عثمانی کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی بنوا رہے ہیں کوئی حضرت جی کے ساتھ سیلفی بنوا رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں کھنچوا رہا ہے یہ ہے نا کہ یہ وہ ان کی وجہ سے ان کی نسبت سے ہمارا بھی ویلیڈیٹی مل جائے ہمیں ہاں کچھ لوگوں کی نیت ایسی نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی ایسی نیت ہوتی ہے عقیدے اور عقیدت اور محبت کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن اگر نیت خراب ہے اگر عمل خراب ہے تو پھر عمل تو وہی بن گیا نا جیسے کہ ان منافقین کا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مسجد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور ایسے لوگ جنہوں نے کہ ایک نقصان پہنچانے والی مسجد، اس غرض سے مسجد بنائی مسجد ضرار کی، وہ ضرر پہنچائیں، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور کفر کریں اور مومنین میں تفرقہ ڈالیں، وارصاد ارصاد یعنی وہاں پہ بیٹھ کر کے مورچہ بندی کر کے وہاں سے پھر مسلمانوں کو شکار کریں، مرصاد کہتے ہیں نا، ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب تو مورچے میں بیٹھ کے جیسے کہ ایک شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے نا، تمہارا رب تمہیں ایسے دیکھ رہا ہے، غور سے دیکھ رہا ہے، تو ارصاد کہتے ہیں کہ گھات کی جگہ، تو جہاں پہ بیٹھ کر کے پھر یہ لمن حارب اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے ہار چکے ہیں نا، جنگ ہار چکے ہیں، تو ان کے لیے گھات کی جگہ بنائے اس مسجد کو، یہاں سے بیٹھ کر کے اپنے آپریشنز کریں گے یہ ایمان والوں کے خلاف. ولا یحلف لفنا ان اردنا الا الحسنا، اور قسمیں کھائیں گے کہ جی ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون. تو جو عقائد ہے نا، یہ جو قرآن سے ہمیں ملتے ہیں نا، جو بنیاد ہے ہماری، اس کے اندر ہارمنی نہیں ہے کہ جی ہاں جی تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہیں، ایک دن تمہارے عبادت چلے گی ایک دن ہماری عبادت چلے گی. مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو کیا پیشکش کری تھی؟ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ، سارے مسئلے ختم، لڑائی جھگڑا معاف ختم، بس ایک دن آپ جو ہے وہ ہاتھ لگا لیے گا ہمارے کسی بت کو، ایک دن ہم جو ہے وہ آپ کے طریقے پہ عبادت کر لیں گے. تو عبادت کا طریقہ، وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے، پانچ وقت کی نماز بھی اگر اس وقت فرض ہو چکی ہوتی، یہ پانچ وقت میں نماز پڑھ لیتے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال کرنے کے لیے تیار تھے. مسئلہ سارا کا سارا تھا عقائد کا. اور عقائد کا کیا مسئلہ؟ کہ جی وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ غلط ہیں. یہ ہے عقیدہ، لا الہ الا اللہ، لا سے شروع ہوتا ہے، نہیں وہ غلط ہے اور صرف یہ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہے. اور جو کہنا شروع ہو جائے کہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں بھی میرا بھی دین ٹھیک ہے ان کا بھی دین ٹھیک ہے، سب چلتا ہے، ان کو اپنا واٹس رانگ ود اٹ، کہتے ہیں نا جی واٹس رانگ ود، واٹس دا بگ ڈیل، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا اور ہم نے اپنا کہہ دیا تو وہ تو وہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہیں، واٹس دا بگ ڈیل اباؤٹ اٹ، واٹس رانگ اباؤٹ اٹ. تو عقیدے کے اوپر کمپرومائز ہرگز ہرگز نہیں کیا جا سکتا. عقیدہ اصل چیز ہے جو کہ تفریق کرتا ہے انسانوں کے درمیان، کفر میں اسلام میں، یہ عقیدے کی تفریق ہے. اور اس کے بعد پھر اعمال کی بات آتی ہے. تو جو موضوع چل رہا ہے کہ اس شخص نے کہا تھا اپنے اس انالیسس کے اندر کہ مسلمان اور جو دوسرے سویلائزیشن والے ہیں تو ان کے درمیان مسئلہ سارا ختم ہو سکتا ہے اگر مسلمان اپنے اندر تین تبدیلیاں پیدا کر لیں. ایک تبدیلی یہ تھی کہ جی معاشی نظام کے اندر تبدیلی پیدا کر لیں اور جو 21ویں صدی کا ہے اس کے مطابق اپنے سارے معاملات کرنے شروع ہو جائیں. اور دوسری تبدیلی تھی کہ جو معاشرتی سسٹم ان کا ہے تو اس میں یہ تبدیلی پیدا کر لیں. اور آخری بیان میں بات ہوئی تھی کہ انہوں نے لباس وغیرہ کی تبدیلی کا اس نے سجیشن نہیں دیا کہ جی لباس تبدیل کر لو تو ہمارا تمہارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، تم اپنے کھانے پینے کے اندر تبدیلی پیدا کر لو تو ہمارا تمہارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یعنی یہ معاشرتی جو تمہارے گھریلو معاملات ہیں نا، ان میں لباس کو بھی ذکر نہیں کیا، کھانے پینے کو بھی ذکر نہیں کیا، تاکہ اس نے تو تعلیمی نظام کا بھی ذکر نہیں کیا. اس نے کس چیز کا ذکر کیا کہ عورت مرد کے درمیان جو تفریق تمہارے دین نے رکھی ہوئی ہے، تم جو اس دین کی لے کر کے کہ جی یہ الگ ہیں یہ الگ ہیں، ان دونوں کے درمیان درجے کا فرق ہے، یہ اس کے اوپر قوامون ہیں، وہ جو ہے وہ دوسرے درجے کی ہیں، یا ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں، فرق جو تم نے رکھا ہوا ہے اس فرق کو ختم کر دو. تو اس کے تحت پھر ہم دوسرا مضمون جو کہ ایک مسلمان خاتون کا لکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بات چل رہی تھی، اسی کے اوپر بلکہ بات چل رہی تھی کہ اس نے جو یہ کہا تھا نا کہ عورتوں سے یہ توقع رکھنا کہ جی ان کے اندر جو ہے وہ उसी किस्म की स्ट्रेंथ है जिस किस्म की स्ट्रेंथ मर्दों के अंदर है, तो ये एक इंतहाई बचकाना किस्म का तसव्वुर है, चाइल्डिश एटीट्यूड, पेटी एंड स्मॉल माइंडेड एज इट इज, बहुत ही छोटा और खटिया किस्म का तंग नजर एटीट्यूड है ये, ओनली सर्व्स टू फोर्स वेमेन विद ऑकवर्ड रोल्स दैट डू नॉट कम नेचुरली टू देम। तो आपके सामने वो वाकया भी बताया था कि अमेरिका के अंदर जब हम एक दफा फजर में निकले तो पता चला जी सामने कचरे की गाड़ी खड़ी हुई है। अब बाय द वे इस दफा कचरे की गाड़ी ऐसी देखी जिसमें कोई बंदा नहीं खड़ा था, वो ऑटोमेटेड ऐसे करके उठाते थे, वो खुद ही डालती थी लेकिन हर जगह ऐसी ये गाड़ियां नहीं पहुंची अभी भी वहां भी। तो बहरहाल तो वो दो बंदे खड़े होते थे तो हमने बैठे रहे कि अभी सामने से गाड़ी हटेगी तो गाड़ी आएगी जाएगी। तो इतनी देर में क्या देखते हैं कि उन दो लोगों में से एक जो थी वो औरत थी जो कि कचरे की गाड़ी के पीछे खड़ी हुई, एक कचरे के ड्रम से दूसरे कचरे के ड्रम, दूसरे कचरे के ड्रम से तीसरे कचरे के ड्रम, और इस तरीके से वो न जाने कब से कर रही थी। क्योंकि ये जो एक गाड़ी होती है उसके जिम्मे पता नहीं कितनी स्ट्रीट्स लगी हुई होती हैं, तो कितने शायद 2-3 घंटे से कर दी होगी, आगे भी 2-3 घंटे तक इसी तरीके से कचरा उठा उठा करके अपने गाड़ी में डालेगी। तो ये उस मुआशरे ने औरत को इज्जत दी है, ये है इज्जत। आप यकीन करें मुझे आंसू आ गए थे उस वक्त, आंसू आ गए थे इतनी हद तक एक औरत जात की देख करके, इतनी ज्यादा हद तक, इतनी ज्यादा जिल्लत एक औरत की कि दूसरों के घरों की नजासत उठा रही है और सड़क के ऊपर अंधे सर्दी में गर्मी में बाहर उस तरीके से काम कर रही है, क्या इसका घर होगा। अच्छा ये मिसाल भी बड़ी अजीब है क्योंकि अभी जब हम सफर करके आए हैं तो अब सफर में 18-18 घंटे की फ्लाइट होती है, 16-16 घंटे की फ्लाइट होती है, तो अब उसके अंदर एयर होस्टेस कौन होती है, मर्द होते हैं कोई एयर होस्टेस, औरतें होती हैं ना सारी की सारी। पहले तो इधर तो फिर भी मर्द होते थे, वह उधर भी औरतें आ गई। तो ये औरतें जो है वो एक मुल्क से चली हैं, 18 घंटे तक वो एक प्लेन में सफर करेंगे, हम तो अभी तक जेट लैग से नहीं निकल पा रहे, अभी वो जो है ना वो रात को जागते हैं दिन में सोते हैं बच्चे भी सारे के सारे। तो अब ये जो खवातीन हैं जो कि जिनकी जॉब ही ये है कि ये वहां से इधर ट्रैवल करती हैं फिर यहां से उधर ट्रैवल करती हैं, तो इनका जेट लैग कब खत्म करती होंगी, कैसे खत्म करती होंगी, अल्लाह बेहतर जानता है भाई। तो घरवाले भी कहने लगे कि इनका घर होता होगा, इनका कोई शौहर भी होता होगा, इनके बच्चे भी होते होंगे, या बस शौहर बच्चे से आजाद और कोई जरूरत ही नहीं है शौहर बच्चे की, या अगर होते हैं तो कैसे होते होंगे, क्या जिंदगी होती होगी। लेकिन इसके अंदर कोई इबरत नहीं है क्योंकि बड़ा जबरदस्त अच्छे से कपड़े पहनती हैं और अच्छे से जो है वो अंग्रेजी बोलती हैं और बड़ा टिप टॉप, तो इस वजह से लोग जो है ना वो कभी ये निशाने इबरत नहीं बनी किसी के लिए, सब उनको देख करके शायद और ही तमन्ना बनती है कि हम भी काश ऐसे होते, हमें भी खूब जहाज में सफर करने का मौका मिलता, हम भी मुल्क मुल्क की सैर करते सफर करते। लेकिन कचरे की गाड़ी, उम्मीद है कि किसी को बात समझ में आएगी कि किस तरीके से कचरे की गाड़ी के ऊपर इन्होंने औरत को खड़ा किया हुआ है। और इसके अलावा क्या क्या वहां की बातें जो कि अपनी गुनाहगार आंखों से देखने को मिलती हैं, अल्लाह रहम करे। तो ये जो करते हैं ना ये लोग, तो ये कोई औरत के लिए कोई फायदा नहीं है इसके अंदर औरत के लिए, बल्कि आगे लफ्ज भी बड़े इसने अच्छे लिखे हैं, किसी वेंडी शैलेट इन हर बुक ए रिटर्न टू मॉडेस्टी उसको कोट किया है कि औरत के पास भी एक स्पेशल वल्नरेबिलिटी होती है, वुमेन आर एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम मेन इन देयर इमोशनल परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, वो जिस तरीके से दुनिया को देखती हैं एक जज्बात का एक उनका एंगल होता है बहुत मुख्तलिफ होता है मर्दों के मुकाबले में, इन देयर हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेसर्स जो स्ट्रेसेस पड़ते हैं उनको किस तरीके से औरत हैंडल करती है मर्दों से बहुत मुख्तलिफ होता है, इसके बारे में पीछे बात कर चुके हैं, इन देयर डीलिंग्स विद डिफिकल्ट पीपल वो कैसे लोगों से डील करती हैं मुश्किल लोगों से वो भी बहुत मुख्तलिफ होता है मर्दों के मुकाबले में, इन देयर नेविगेशन ऑफ रिलेशनशिप्स वो किस तरीके से रिलेशनशिप्स के अंदर अपना रास्ता बनाती हैं बहुत मुख्तलिफ होता है मर्दों के मुकाबले में, यानी औरत एक बिल्कुल मुख्तलिफ जात अल्लाह ताला ने बनाई है और मर्द एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक तो बल्कि एक एक किसी अंग्रेज की लिखी हुई अंग्रेजी की किताब भी है कि वुमेन आर फ्रॉम वीनस एंड मेन आर फ्रॉम मार्स, वीनस जो है वो अर्थ से इस तरफ वाला प्लैनेट है, सूरज के करीब है बाय द वे लेकिन है वो इस तरफ इस, और मेन आर फ्रॉम मार्स है, मार्स उस तरफ ठंडा गर्मी पहुंचती नहीं है उधर, औरतें भी गए आप तो बिल्कुल ही ठंडे हैं है ना, आप बिल्कुल ही गर्म है। बहरहाल वो भाई मैंने नहीं लिखी वो, और किसी मौलवी साहब ने भी नहीं लिखी, वो गोरे ने लिखी है ना। उसने वुमेन के लिए वीनस पसंद किया, उसने मैन के लिए मार्स, खुद ही उन्होंने नाम भी रखे वी और डब्ल्यू दोनों मिलते हैं, और मैन मी एम और एम दोनों मिलते हैं। बहरहाल क्या हिकमत है, मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन उसका टाइटल कम अज कम इतना ही है। तो इसने लिखा कि नॉट अलाउिंग, इसने यानी ये जो उम्मे खालिद हैं, इन्होंने लिखा है कि नॉट अलाउिंग वुमेन टू बी वीक एट टाइम्स टू बी वल्नरेबल, यानी आप औरत को हार्ड बनाना चाह रहे हैं ना, सख्त, आई कैन डू एवरीथिंग। वो अभी हम एक स्टोर में थे, तो स्टोर से जब वो चेकआउट काउंटर पे पहुंचे तो कार्ट के अंदर सामान था, तो सामान को उठा उठा करके फिर वो उसके जो काउंटर के ऊपर रख रहे थे, तो बच्चे आ गए दोनों छोटे, तो मोहम्मद साहब जो हैं वो भी उठा के रखना चाह रहे हैं, और साथ उनमें कुलसूम भी आ गई, वो उनसे भी छोटी 3.5 साल की, तो उन्होंने कहा वो भी उठा उठा के रखने की कोशिश कर रही है सारा सामान। तो बहरहाल मैंने छोड़ दिया, जो भारी होगा वो मैं खुद उठा दूंगा, बाकी इन नौ को उठाने दें। तो पीछे एक गोरी खातून खड़ी हुई थी हमारे लाइन में, उन्होंने देखा ना कि जी हाँ ये 3.5 साल की बच्ची ये भी जो है ना वो इस तरीके से सामान उठा उठा करके अपने भाई की तरह से रखने की कोशिश कर रही है। तो पीछे से कहती हैं, यस आई कैन डू एवरीथिंग दैट माय ब्रदर कैन डू, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो कि मेरा भैया कर सकता है। हंस के हम चुप हो गए, खैर कुछ कहा नहीं उनको, जाहिर है। लेकिन वो इसी बात को, कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। खैर बाद में ख्याल में अगर कुछ हिम्मत होती तो पूछता अभी वो ओलंपिक्स के अंदर दोनों साथ क्यों नहीं खेलते, ये बताएं ना आप। आप क्या अमेरिका में और यूरोप में जो ओलंपिक्स होते हैं तो वेमेन स्पोर्ट्स और मेन स्पोर्ट्स को बराबर क्यों एक साथ क्यों नहीं रखते आप, जब ये चाहते हैं कि भाई सब आई कैन डू एवरीथिंग दैट दे कैन डू, तो फिर एक दूसरे के साथ खुद ही फिर सब कुछ साथ खेला करें, अलग अलग खाम खा अपने पर अलग अलग बनाया हुआ है। बहरहाल तो शैतान के धोखे होते हैं जो कि बनी आदम को देता है, वो बनी आदम जो है अमेरिका में रहने वाली बनी आदम हो या ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान में, शैतान का धोखा तो बनी आदम के लिए है, शैतान का धोखा पाकिस्तानी सऊदी और मुसलमान के लिए नहीं है, वो बनी आदम के लिए है शैतान का धोखा, चाहे वो गोरी स्किन का हो चाहे किसी भी स्किन का हो। तो कहती है कि जी औरत को कमजोर होने की इजाजत ना देना, नॉट अलाउइंग वुमेन टू बी वीक एट टाइम्स टू बी वल्नरेबल, कि भाई इसको भी कुछ चोट लग सकती है, इसको भी कुछ नुकसान हो सकता है, इसकी इजाजत ना देना औरत को, नहीं तुमको कैसे, हाउ कैन यू बी वीक, हाउ कैन यू बी क्राइंग, इस तरह से औरत के साथ करना। टू नॉट हैव टू बी स्ट्रांग एट ऑल टाइम्स, कि हर वक्त औरत जो है वो मजबूत बन करके दिखाए, उसको इस बात की इजाजत ना देना कि तुम भी कभी कमजोर हो सकती हो। तो कहती है कि ये जो एटीट्यूड है ना औरत के बारे में कि जी औरत कमजोर कैसे हो सकती है, औरत तो पावरफुल होगी, स्ट्रांग होगी, तो दिस इज रुथलेस मर्सीलेस, यानी ये दरिंदगी है, ये सफाकी है, ये जुल्म है औरत के साथ, कि आप औरत को हर वक्त जो है वो नहीं, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू कैन डू एवरीथिंग, यू हैव टू बी अप देयर विद देम, फाइट विद देम, बी द वंडर वुमन, जिस तरह वो सुपरमैन होता है तुम वंडर वुमन बन सकती हो, ये औरत के साथ ज्यादती है, ये जुल्म है, ये सफाकी है औरत के साथ। डिनाइंग वुमेन देयर नेचुरल इनबिल्ट ट्रेट्स ऑफ फेमिनिनिटी इन द नेम ऑफ इक्वालिटी इज द हाइट ऑफ मिसोजिनी, ये जो है ना औरत के ऊपर तशद्दुद, औरत के ऊपर जुल्म, जो कि हमारे यहां क्या है कि जी पिटाई करना औरत की है ना, जिसका हाथ चलता है तो वो पिटाई करता है, औरत को मारता है, कोई हाथ से मारता है, कोई थप्पड़ मारता है, कोई डंडे से मारता है, कोई जो है वो धक्के देता है। तो इस वजह से औरत के ऊपर जुल्म की खाली एक यही शक्ल हम जानते हैं कि बस सिर्फ डंडे से मारना, हाथ से मारना, ये औरत के ऊपर जुल्म है। लेकिन ये क्या लिख रही है, ये कह रही है कि औरत को इस बात की इजाजत ना देना कि वो औरत बन करके रहे, दिस इज द हाइट ऑफ मिसोजिनी, ये औरत के ऊपर तशद्दुद की इंतहा है ये, क्योंकि ये फिजिकल तशद्दुद इन वे नजर नहीं आता, लेकिन ये साइकोलॉजिकल तशद्दुद है और ये अल्टीमेटली जाकर के फिजिकल तशद्दुद बनता है उसके ऊपर, अल्टीमेटली बाद में जाकर के ये फिजिकल तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर जाता है, क्योंकि फिर वो एक फिजिकल अजियत के अंदर भी जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन शुरू में आप उसको खाली मेंटली जो है ना वो इस तरीके की तरगीब, ऐसा आप उसको ब्रेन वॉश या एक्चुअली उसके ब्रेन को जो है वो खराब कर रहे होते हैं, गंदा कर रहे होते हैं
कि उसको जैसा उसके परवरदिगार ने बनाया है उससे हटा करके उसको वैसा बनाने की कोशिश जैसा उसके परवरदिगार ने उसको नहीं बनाया है। द ओनली पीपल अच्छा द रियलिटी इज स्ट्रेंथ डज नॉट नीड टू बी अनाउंस्ड, कि जो ताकत है ना इसकी अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहां पे जो उन्होंने लिखा है इसको उन्होंने खुद ही आगे करेक्ट भी कर लिया है कि कॉन्स्टेंटली अनाउंस, ठीक है, कि अगर कोई ताकतवर है ना तो उसको अपनी ताकत को हर वक्त अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। ये बात इसाजिस के दिल में कैसे आई, वैसे तो अगले जुमले से भी उन्होंने भी कंफर्म कर दिया, लेकिन मैंने इस जुमले को पढ़ करके फौरन सोचा कभी अल्लाह ताला भी अपनी ताकत को अनाउंस करते हैं, है ना, तो फिर ये जुमला तो ठीक नहीं हो सकता कि स्ट्रेंथ द रियलिटी इज स्ट्रेंथ डज नॉट नीड टू बी अनाउंस्ड। नो, स्ट्रेंथ नीड्स टू बी अनाउंस्ड, वरना परवरदिगार गलती नहीं करते, अल्लाह ताला गलती नहीं करते कि अपनी स्ट्रेंथ को अनाउंस कर रहे हैं कि मैं कादिर हूं हर चीज के, इन्नल्लाह अला कुल्ल शयइन कदीर, मलकुस समावाती वल अर्द मालिकुल मुल्क, अल्लाह ताला अपनी स्ट्रेंथ को अनाउंस करते हैं। तो इस वजह से इसको फिर हम कैसे पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ डज नॉट नीड टू बी अनाउंस्ड ऑल द टाइम। अल्लाह ताला अपनी रहमत को भी अनाउंस करते हैं, अल्लाह ताला अपनी मगफरत को भी अनाउंस करते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को भी अनाउंस करते हैं, खाली अपनी स्ट्रेंथ को अनाउंस नहीं करते। तो आगे फिर उन्होंने खुद ही उसको करेक्ट भी कर लिया, द ओनली पीपल हु फील द नीड टू कॉन्स्टेंटली एडवर्टाइज देयर स्ट्रेंथ टू द वर्ल्ड आर द वीक। जो हकीकत में कमजोर तरीन लोग होते हैं ना वो सबसे ज्यादा यूं करके सीना चौड़ा करके ना लोगों को, नहीं नहीं मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूं। एक किसी ने एक कार्टून नुमा पिक्चर भेजी था जिसके पास थी, तो जरा वो किसी तबके के बारे में, लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो क्या थी कि वो एक कार्टून कैरेक्टर है हल्क, बहुत उसकी मोटी मोटी उसकी मसल्स हैं और बहुत जो है ना वो ताकतवर है। तो उसके सामने ना फिर एक बच्चा है, एक लड़का बिल्कुल ही कांकड़ी, जो कहते हैं ना वो कांकड़ी पहलवान, ठीक है, तो वो उसके सामने है और वो ऐसे अपना सीना तान करके, नहीं मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं, ठीक है, हालांकि हल्क जो है वो उससे चार गुना उसका साइज, उसके पास पावर सब कुछ है, लेकिन ये अपना सीना ताने, नहीं मैं भी स्ट्रांग हूं, तुम क्या खाली को थोड़ी स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग हूं। तो अब जाहिर सी बात है वो स्ट्रांग की थोड़ी है, लेकिन वो शोर मचाएगा कि नहीं मैं तो बहुत, जैसे छोटे बच्चे अपनी गलतफहमी में करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये हर वक्त ना औरत जो है वो स्ट्रांग है, औरत इंडिपेंडेंट है, औरत जो है ये है, औरत जो ये जो मुस्तकिल की एक उन्होंने राग अलापा हुआ है ना, ये असल में कमजोरी की अलामत है। और आगे लिखती है ये इनसिक्योरिटी की अलामत है, अदम तहफ्फुज, यानी आप इस मखमसे की मुब्तला है कि जी मैं अगर किसी चीज को ज्यादा बोलूंगी ना या ज्यादा बोलूंगा ना, जिसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, ये रियलिटी नहीं होती, हकीकत नहीं होती, ये प्रोपेगेंडा होता है, और प्रोपेगेंडा वर्क्स ऑल्सो, लेकिन इट वर्क्स इन द वर्ल्ड, इट डज नॉट वर्क विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट डज नॉट वर्क इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, प्रोपेगेंडा। तो आप किसी चीज को प्रोपेगेंडा के तौर पर किसी झूठ को उठा करके ज्यादा बोलना शुरू कर दें तो जो बेवकूफ लोग होते हैं वो उसको सच समझना शुरू कर देते हैं, अकलमंद नहीं प्रोपेगेंडा के ऊपर राजी होता, वो नहीं झूठ को जो है वो सच समझना शुरू हो जाता, लेकिन जो बेवकूफ होता है वो प्रोपेगेंडा के अंदर जितना ही झूठ जितना ही सर चढ़ करके बोला जाए वो उसको सच मानना शुरू कर देता है। तो ये इनको एक बात समझ में आ गई है, इनके गुरुओं ने इनको समझा दिया कि तुम ज्यादा बोलोगे ना औरत स्ट्रांग, तो वाकई लोग मान जाएंगे हाँ जी औरत स्ट्रांग है तो वही कोशिश करे चले जा रहे हैं, और जाहिर है फिर वो जो अकल इस्तेमाल करने वाले नहीं है वो वाकई मान भी रहे कि हाँ वाकई औरत स्ट्रांग है, शी कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। आगे इसने एक नजम लिखी है, कहती है द गर्ल बैंड, यानी लड़कियों का एक म्यूजिक बैंड था, डेस्टिनीज चाइल्ड उसका नाम था, हैज अ सॉन्ग फ्रॉम बैक इन द डेज, यानी 1999 में उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था और सॉन्ग जो है वो फिर वो गाने की शक्ल में उन्होंने गाया था। ये सॉन्ग जो है ना ये एक जबरदस्त तराना बन गया, इनका फेमिनिज्म का तराना बन गया है सॉन्ग, सॉन्ग क्या है इसको सुने, कुछ इसके अल्फाज थे, I buy my own diamonds and I buy my own rings. यानी मेरा डायमंड मैं खुद ही खरीदती हूं, अपनी अंगूठी भी मैं खुद ही खरीदती हूं। फिर आगे कुछ फोहश किस्म की बातें वो आपके सामने नहीं सुनाएंगे। फिर आगे लिखती है Try to control me, boy, you get dismissed. मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगी यार, जाओ, तुम्हारा नाम काट दिया स्कूल से। स्कूल से डिसमिस कर देते हैं ना, क्लास से डिसमिस कर देते हैं। तो वो मर्द, तुम अगर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगी। जब सारिस ने ये पढ़ा तो सोचा कि हाँ वाकई, मेरा जिसे मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। तो क्या है ये कि जी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, तुम चाहे कोई भी हो, ये नहीं कि शौहर की बात नहीं मानूंगी, भाई की बात नहीं मानूंगी, अब्बा की बात नहीं मानूंगी, नहीं, ये कॉमन चीज है, ये प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मर क्यों इसके अंदर से बाहर निकले, मैं बस अपनी बात मानूंगा। नफ्स परस्ती जो हमारे मशाइख कहते हैं वो क्या चीज है, मैं बस अपनी मानूंगा। मेरा नफ्स कुछ भी कहेगा, चाहे वो गुनाह का काम मुझे करने के लिए कहे तो भी मैं मान लूंगा, चाहे वो नेकी का काम करने के लिए मुझे कहे वो भी मैं मान लूंगा, लेकिन मैं तेरी नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, बस। और हमारे मशाइख क्या फरमाते हैं, अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक और आया कि हमारे शेख हजरत अब्दुल हय आरफी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि ये दीन शौक पूरे करने का नाम नहीं है। नफ्स परस्ती क्या होती है, शौक। मेरा दिल चाह रहा है आज मैं बुरका ओढ़ लूं तो मैं बुरका ओढ़ूंगी, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज जाकर के जो है वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चिल करके आऊं तो मैं चिल करके आऊंगी या चिल करके आऊंगा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये करूं मैं वो करके आ जाऊंगा, मैं घर में ये करना है वो करूं, तो ये हमारा दीन नहीं है। आज एक भाई ने भेजा कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ना एक बुरके वाली खातून जो है वो ग्रेजुएट हुई है, तो दीन और दुनिया साथ साथ की बेहतरीन मिसाल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पहली मिसाल नहीं है, अभी चंद दिन पहले वो कोई कैलिफोर्निया में भी एक यूनिवर्सिटी में भी एक बुरके वाली खातून बड़े मजे से ऊपर गई थी और वो सनद लेकर के आई थी, हाथ भी मिलाने से इनकार कर दिया था। ये दीन नहीं है, बुरका इज नॉट दीन। बुरका पहन करके मैं सब कुछ कर सकती हूं, ये कहां से आ गया, ये कौन सा दीन है, ये तो बिल्कुल भी दीन नहीं है। ये कहां से कौन सा दीन आया है कि मैं बुरका पहन के सब कुछ कर सकती हूं। दीन इसको कहते हैं ना, ये पता नहीं हम डॉक्टर में नहीं होंगे, डॉक्टर लोग नाराज हो जाते हैं, एड्रेनालाइन इफेक्ट कहते हैं ना कुछ इसको, है? अंदर जरा हॉर्मोन्स टिक होते हैं, तो बुरका पहन के भी हॉर्मोन्स टिक हो सकते हैं, अपनी अचीवमेंट का एहसास हो सकता है, हाँ जी आई अचीव समथिंग, मैं देखो गोरों के सामने बुरका पहना है, आई कैन डू इट। ये दीन नहीं है। दीन क्या है, अतीउल्लाह, जो कुरान से मिलता है ना वो है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, और मौली साहब की बात मानना, व उलिल अम्र मिनकुम। नफ्स इसके अंदर नहीं आता, और नफ्स के बारे में क्या फरमाते हैं, अफराईता मन इत्तखदा इलाहु हवा, क्या आपने देखा ऐसे शख्स को कि जिसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को अपना परवरदिगार बनाया हुआ है, वो अतीउल्लाह की बजाय अतीउन नफ्स। या तो मौलवी साहब से पूछा, न नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखा, ना सहाबा की सुन्नत को देखा, न अल्लाह की रजा को देखा, कुछ नहीं, नफ्स की ख्वाहिशात। तो नफ्स की ख्वाहिशात सिर्फ शराब पी करके पूरी नहीं होती, नफ्स की ख्वाहिशात बुरका पहन करके भी पूरी होती है, दाढ़ी रख करके भी पूरी हो सकती है, जुब्बे इमामे पहन करके भी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी हो सकती है। मैं नेकी करूंगी अगर तू करेगा तो करूंगी, नहीं करूंगी अगर तो मैं नहीं करूंगी, ये तो इल्लत नहीं है नेकी करने की। इल्लत समझता है ना, वजह, किसी काम की वजह, उसको इल्लत कहते हैं फिकह के अंदर। तो मुसलमान के नेकी की इल्लत जो है वो ये नहीं होती कि दूसरा मेरे साथ नेकी कर रहा है तो मैं उसके जवाब में उसके साथ नेकी करूंगा, या दूसरा मेरी इज्जत करेगा तो मैं उसके साथ इज्जत का मामला करूंगा, या मुझे अच्छा लगेगा जब कोई नेकी का काम करना तब मैं वो नेकी का काम करूंगा, नहीं, ये इल्लत नहीं है। इन तीनों में से कोई एक भी इल्लत नहीं है मुसलमान के लिए नेकी का काम करने की। क्या है इल्लत, अल्लाह का हुक्म, जो कि नबी अलैहिस्सलाम से होते हुए हमारे मशायख और उलमा के वास्ते से हम तक पहुंचा है कि अल्लाह का हुक्म है क्या। ये है इल्लत, किसी के साथ इज्जत का मामला करना, वालिदैन की इज्जत करना, इसलिए कि जी उन्होंने बचपन में मेरे साथ इतना अच्छा किया था, अगर नहीं किया था तो फिर क्या करोगे? अगर उन्होंने आपको डंप कर दिया था तो तुम वालदैन की इज्जत नहीं करोगे? अगर उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया था, तलाक दे दी थी तुम्हारी माँ को, फिर छोड़ के चला गया था, अब तुम बाप को थप्पड़ मारोगे जाकर के कि वो तुम्हें छोड़ के क्यों चला गया था? तो इल्लत अगर उसके अमल की बुनियाद पर उसके साथ हुस्न सलूक करना है तो फिर तो अगर उसने अच्छा किया तब करोगे, नहीं किया तो नहीं करोगे। लेकिन ये तो इल्लत नहीं है ना, इल्लत तो अल्लाह का हुक्म है ना, जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है ना। उसी तरीके से शौहर की इज्जत, जी शौहर मेरे साथ इज्जत से पेश नहीं आता तो मैं क्यों इज्जत से पेश आऊं, ये इल्लत है तुम्हारी शौहर की इज्जत करने की, या नबी अलैहिस्सलाम का फरमान ये इल्लत है शौहर के साथ इज्जत के साथ पेश आने की। बीवी को एहसास, हिफाजत का एहसास दिलाना, ये हमारे दीन का, हमारे मशायख की तालीम है। नहीं जी वो मेरे साथ तो ऐसा नहीं करती, मेरी इज्जत नहीं करती, तो इस वजह से जो है वो मैं तो कभी पड़ोसन की तारीफ करूंगा उसके सामने बैठ करके, कभी जो है मैं वो अपने दफ्तर की सेक्रेटरी की तारीफ करूंगा, कभी मैं जो है किसी औरत के बारे में बात करूंगा ताकि ये भी जरा जले, ये भी कुढ़े, इसको भी एहसास हो कि मैं उसको छोड़ सकता हूं। बीवी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बीवी को हिफाजत का एहसास दिलाना, इसकी इल्लत जो है वो दीन की तालीम है, ये नहीं कि वो मेरे साथ क्या करती है। तो इल्लत की समझ क्या है हमारी, हम क्यों काम करते हैं, वाई, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रीजन, बगैर सोचे समझे कोई काम कर रहे हैं बस भेड़ चाल के अंदर, जिस तरफ सारे के सारे जा रहे हैं हम भी उसी तरफ सारे के सारे जा रहे हैं, ना कुछ अकल, ना समझ, ना सोच, ना फिक्र। तो क्या ये इसकी इंतहा, फिर सुने इस गाने के अंदर, ये इंतहा है, ये अभी हम वहां पहुंचे, हम में से बहुत से भी नहीं पहुंचे, बहुत सारे पहुंच भी चुके हैं लेकिन सारे नहीं पहुंचे, लेकिन जब इसी रास्ते पे चलते रहेंगे तो डेस्टिनेशन यही है, यही है हमारी मंजिल जहां पर ये पहले पहुंच चुके हैं हमसे। क्या कहती है कि ट्राई टू कंट्रोल मी बॉय यू गेट डिसमिस्ड, पे माई ओन कॉर नोट एंड आई पे माई ओन बिल्स। मैं अपने घर का खर्चा खुद उठाती हूं, मैं अपने गाड़ी का सारा काम खुद करती हूं। ऑलवेज 50-50 इन रिलेशनशिप्स, 50-50। और यही होता है, हजरत जी अपने बयान के अंदर बताते रहते हैं कि जी वो आधा खर्चा वो अपने सिगरेट का पैसा खुद देता है, ये अपने सिगरेट का पैसा खुद देती है, ये आधे आधे बिल शेयर करते हैं, आधा आधा सारा काम शेयर करते हैं, हर चीज इसी तरीके से। तो इसको फखर से बयान कर रही है कि ऑलवेज 50-50 इन रिलेशनशिप्स, द शूज ऑन माई फीट आई बॉट देम, जो मैं जूते पहनेंगे ना मैंने खरीदे हैं, तुमने घर ही दिलाए, द क्लोथ आई एम वेयरिंग आई बॉट देम। वाकई फखर की बात तो है ना, सही है, द क्लोथ आई एम वेयरिंग आई बॉट देम, द रॉक आई एम रॉकिंग आई बॉट इट, बिकॉज आई डिपेंड ऑन मी इफ आई वॉन्ट इट। वर्क प्लेस के अंदर खवातीन नजर आ रही है ना ज्यादा, अब वो उनको किसी को डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कमाती हैं, खुद ही खाएंगी, है ना। खैर है तो ये पहले दोबारा रिमाइंड करवाने की खातिर कि वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, रिमाइंड कराने की खातिर कि सब कुछ जो है ये मर्दों के ही कसूर की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना ये औरतों पर ब्लेम ना करें। ये तो हम बात कर रहे हैं समझाने के लिए कि खुदा के बंदो दीन, दीनदारी और दीन के ऊपर अमल और दीन की तालीम और दीन का सब कुछ, तो जरा उसके ऊपर अमल भी, यानी काफिरों के सामने बेवकूफ बनने की बजाय जो है ना कुछ अकल को इस्तेमाल कर लें, खाली इस वजह से बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि औरतों का कसूर, औरतों नहीं, कसूर सारा मर्दों का है, कसूर सारा मर्दों का है कि जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अल्लाह की मान लेते, अल्लाह के रसूल की मान लेते ना तो ये नहीं होता इस तरीके से, और ये कंटिन्यू नहीं हो सकता अगर अल्लाह उसके रसूल के मान के चलो। तो कहती है कि बिकॉज आई डिपेंड ऑन मी इफ आई वॉन्टेड, द वॉच आई एम वेयरिंग आई बॉट इट, द हाउस आई लिव इन आई बॉट इट, द कार आई एम ड्राइविंग आई बॉट इट, आई डिपेंड ऑन मी, आई डिपेंड ऑन मी, ऑल द वुमेन हु आर इंडिपेंडेंट थ्रो योर हैंड्स एट मी, यानी जितनी औरतें और अब इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही है ना, सब जो है वो मेरे लिए नारा लगाएं, मेरे लिए हाथ उठाएं, ऑल द हनीज हु आर मेकिंग मनी, जितनी अच्छी अच्छी औरतें अपना पैसा खुद बनाती हैं ना, तो वो सब की सब मेरे साथ मिल करके गाएं। आई वॉन्ट टू लिव, लिव हाउ आई वॉन्ट टू लिव, मैं वैसे जिंदगी गुजारती हूं What I want, live how I want to live. मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारती हूँ. I worked hard and sacrificed to get what I get. मेरे पास जो कुछ भी है मैंने उसके लिए कुर्बानियां दी हैं. मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी है. मैंने उसके लिए रातों को जाग जाग करके किताबें पढ़ी हैं, तालीम हासिल करी है, यूनिवर्सिटी गई हूं. ये भी इसके अंदर लिखा नहीं है वैसे, है ना. कहते हैं ना कि जी जब इतनी मेहनत करके तुमने डिग्री ली है तो अब घर बैठ करके क्यों जाया कर रही हो, जाओ जा करके कमाओ, है ना. इतनी डिग्री माशाल्लाह ये सब लेकर के हमने तुम अपने बेटे की शादी तुमसे इसलिए करी थी तुम्हारी डिग्री की वजह से, और तुम कहती हो मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने घर बैठ के खाना है. चलो निकलो जाकर के जॉब करो, है जरा पैसे लेकर के आओ, मेरे बेटे की भी जिंदगी आसान हो, मेरी भी जिंदगी आसान हो, सास अम्मा ससुर सब. और ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रोपोर्शन के घरों के अंदर यही हो रहा है. लेडीज इट ऐंट ईजी बीइंग इंडिपेंडेंट, यानी आजाद होना ना ये इतना आसान काम नहीं है. इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है. तो ये जो गाना है ये इनका रैलियंग क्राई बन गया, नारे बन गए. द वुमन बेसिकली टर्न इन टू ए मैन, यानी इसके ऊपर तबसरा करते हुए लिखती हैं कि ये जो औरत है ये बेसिकली क्या, ये एक मर्द बन गई है, ठीक है ना. शी हैज बिकम हर ओन प्रोवाइडर, हर ओन प्रोटेक्टर, हर ओन हस्बैंड. आजकल जो ये दुनिया में चल रहा है ना, बच्चे भी बैठे हुए तो इस वजह से ज्यादा तफसील में नहीं जा सकते. तो ये तो चल रहा है ना कि जी औरत को मर्द की जरूरत नहीं है, बस औरत ही औरत के लिए काफी है. ये आज शुरू नहीं हुआ, ये इसकी बुनियादें ये बहुत पहले से बना रहे थे कि भाई औरत को अब शौहर की जरूरत ही कोई नहीं. क्या करेगा शौहर जब सब काम वो खुद कर रही है, तो जब शौहर की जरूरत ही कोई नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है फिर उसके लिए औरत ही काफी है. और जब औरतों के लिए औरतें काफी हो जाएंगी तो मर्दों को औरतें की तरफ से मिलेंगी, तो मर्दों के लिए मर्द काफी हो जाएंगे. और इस वक्त दुनिया के अंदर क्योंकि ग्राउंड वर्क ये कर चुके हैं, ग्राउंड वर्क पहले हो चुका है, मर्द औरत वाले जो बेहयाई थी ये पहले खत्म, ये अचीव हो चुका है टारगेट. अब ये इसकी बुनियाद पर अगले स्टेप पर आए, ये बेहयाई के एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो आए हैं ना, ये पिछले लेवल को अचीव करके आए हैं. ऐसी हवा में उन्होंने ये नेक्स्ट लेवल अचीव नहीं कर लिया ना, शुरू नहीं कर दिया. उसी तरीके से हमारे यहां ये पहले लेवल के ऊपर जो काम हो रहा है ना, अभी दूसरे लेवल पे भी काम शुरू हो चुका है बाय द वे पाकिस्तान के अंदर. क्योंकि जहां जहां पहला लेवल अचीव हो चुका है औरत मर्द की आजादी, तो वहां दूसरे लेवल पे काम शुरू हो चुका है. और जहां पे नहीं पहला का काम अभी पूरा हुआ वहां पे अभी पहले के ऊपर खूब काम हो रहा है. तो इन हकायक को जरा हम समझें, क्योंकि हम भी जो है ना इतना दीन पढ़ पढ़ करके और दीन सुन सुन करके और दीन सोच सोच करके ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही. हमारी दौड़ अभी भी उन्हीं के पीछे लगी हुई है, हमारी दौड़ अभी भी उसी रास्ते पर है. हत्ता के अच्छे खासे लोग जो हैं, अच्छा खासा इल्म रखने वाले लोग भी नहीं समझ में आ रही है बातें उनको. नहीं नहीं कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, ये हमारा दीन को थोड़ी है पढ़ने लिखने के खिलाफ, हमारा दीन को थोड़ी है जी इसके खिलाफ. हमारे दीन में तो ये भी हो सकता है, हमारा दीन तो इकरा से शुरू हुआ था. इकरा से इसलिए शुरू हुआ था ना, इकरा से ये पढ़ने के लिए कहा था तुम्हें, तलब अल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, है ना. वो इल्म का हासिल करना फर्ज है. वो कौन सा इल्म हासिल करना फर्ज है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो मिलता है, जो कैम्ब्रिज के अंदर मिलता है, जो हार्वर्ड के अंदर मिलता है. नबी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने उस इल्म को फर्ज करार दिया था. क्या कहते हैं इसके ऊपर बात, जो देर हो चुकी है, 5:07 हो रहा है. अच्छा, एक बड़े दीनदार साहब के बारे में सुनने को मिला. हमारे एक भाई ने बताया कि जी उन्होंने कहा कि जी मैं अपने बच्चों के तालीम के ऊपर हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. मैं अपने बच्चों की तालीम के ऊपर हरगिज कॉम्प्रोमाइज, यानी बड़ा सख्त तरीके से ना ऐसे. मैंने कहा काश ये जुमला भी कभी सुनने को मिले कि मैं अपनी औलाद के दीन को हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं अपने औलाद की हया को हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं अपने औलाद के अकायद को हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, चाहे मुझे किसी दूसरी चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, इसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. लेकिन क्या सुनने को मिलता है? दुनियादारों का गिला नहीं है, दुनियादारों की बात नहीं हो रही, दीन के अलमवरदारों की बात हो रही है. दीन के لمبی لمبی داڑھیوں والوں کی، دین کی محنتیں کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، وہ اس قسم کا جب جملہ بولتے ہیں نا تو دکھ ہوتا ہے۔ آپ آنکھیں اللہ تعالی نے نہیں دیں، آپ کس تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ پر آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے، کون اس تعلیم کی رسیاں چلاتے ہیں، کون اس تعلیم کو کنٹرول کرتے ہیں، اس تعلیم کا کانٹینٹ کیا ہے، اس تعلیم کا مقصد کیا ہے، اس تعلیم سے دنیا کے اندر کیا پھیلا ہے، کچھ دیکھتے نہیں ہیں آپ۔ جملہ کہیں سے پکڑ لیا ہے، کہیں سے سن لیا ہے، یا اپنے دماغ کے اندر ہی بنا لیا ہے کہ میں اس کے اوپر کسی دوسری چیز کو فوقیت نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، جس دن آنکھ بند ہوئی اس دن یہ سارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس دن پھر جو ہے نا جب فرشتے نظر آئیں گے، اور پھر جب اولاد بھی پیچھے پیچھے آئے گی، اور پھر وہ کہے گی نا کہ جی یہ تھے جنہوں نے ہمیں اس راستے پہ ڈالا تھا، آپ ان کو دگنا عذاب دیجئے، آپ ان کو دگنا عذاب دیجئے، خالی ہمیں جہنم میں نہ ڈالیے، یہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بنے تھے، انہوں نے ہمیں اس راستے کو بٹا رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں سب کچھ کمپرومائز کر سکتا ہوں، اس کو میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو ہمارے ذہن میں بھی یہی تصور بن گیا ہے نا کہ جی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے آگے ہر چیز سیکنڈری ہے، ہر چیز ثانوی حیثیت رکھتی ہے، یہ اصل مقصد زندگی ہے۔ تو ہم نے بھی اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دگنا عذاب ملے گا، ماں باپ کو بھی دگنا عذاب ملے گا، اولاد کو بھی دگنا ہی عذاب ملے گا، یعنی جتنا پہلے مل رہا تھا نا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، ڈبل، دونوں کو ڈبل۔ تم بھی جب بڑے ہو گئے تھے تمہیں بھی عقل میں نے دے دی تھی، تمہیں بھی میں نے سمجھ دے دی تھی، تم اس وقت توبہ کیوں نہیں کر لی تم نے؟ تم اس وقت کیوں نہیں پلٹ گئے جب ہدایت میں نے تمہارے سامنے بھی کھول دی؟ اب تم اپنے ماں باپ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جی چونکہ ماں باپ نے ڈال دیا، اب تو جی میں چونکہ ففتھ گیئر کی میں اس راستے پہ چل پڑا ہوں، اب بریکس میں نہیں مار سکتا، اب میں یو ٹرن نہیں کر سکتا۔ نہیں، تمہارے پاس بریکس بھی تھے اور تمہارے پاس سٹیئرنگ ویل بھی تھا، تم یو ٹرن بھی کر سکتے تھے۔ آج کل تو بڑے بڑے لیڈر یو ٹرن کر لیتے ہیں، ہم بڑے دھڑلے سے اعلان بھی کرتے ہیں، تم نہیں کر سکتے تھے یو ٹرن۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان باتوں کو سمجھنے میں ہماری مدد عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات ہے سمجھنا، تاکہ علم تو صحیح ہو جائے نا، جب علم صحیح ہو جائے گا، سمجھ صحیح ہو جائے گی، پھر اگلی باری آتی ہے عمل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے بھی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو اسے دعا کر کے بس ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھنا پڑے گا۔ سبحان ربی العالی الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، فارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے کریم آقام، تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ چاہے نہ چاہے نیکی کے راستے پہ چلنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں، اے اللہ کوئی عمل نہیں، کوئی علم نہیں، اے اللہ سمجھ نہیں، اے اللہ تیرا ذکر کرنے کی بھی توفیق نہیں، اے اللہ اعمال کی بھی توفیق نہیں، اے اللہ کچھ قوت نہیں، کچھ طاقت نہیں، اے اللہ صرف تیری ذات کے اوپر اے اللہ ایک اعتماد ہے، ایک بھروسہ ہے، اے اللہ کہ تو ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اے اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اے اللہ تو ہماری حفاظت کرے گا۔ اے اللہ ہماری اس لاج، اس بھروسے کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اس ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ اس یقین سے محروم نہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم انتہائی مشکل دور میں زندہ ہیں، اے اللہ ایسے فتنے کے دور میں زندہ ہیں، اے اللہ ایسے دھوکے کے دور میں زندہ ہیں کہ اے اللہ بات کی سمجھ نہیں لگ رہی، اے اللہ ہمیں حقیقت کی سمجھ نہیں لگ رہی، اے اللہ ہمیں جھوٹ کی سمجھ نہیں لگ رہی، اے اللہ ہمیں حقیقت کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جھوٹ کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما فرما دیجئے. اے اللہ بالکل تہی دامن ہے, اے اللہ کوئی صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتے, اے اللہ جیسے بھی ہیں, اے اللہ آپ کے بندے ہیں, آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, اے اللہ ہمارے پاس کوئی تدبیریں نہیں ہیں, اے اللہ ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہیں, اے اللہ ہم اپنے دشمنوں کے رحم و کرم کے اوپر آ چکے ہیں, اے اللہ ہر لحاظ سے ہم ان کے سامنے ترنے والا بن چکے ہیں, اے اللہ آپ کی ذات کے علاوہ اور کوئی بچانے والا نہیں ہے, اے اللہ صرف آپ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہی ہے کہ جو کہ ہمیں اس سے بچا سکتا ہے. اے اللہ اس بھروسے کو مضبوط بنا دیجئے, اے اللہ یہ بھروسہ بھی ہمارا بہت ہی کم ہے, اے اللہ اس بھروسے کو تقویت عطا فرما دیجئے, اے اللہ اپنی ذات کے اوپر توکل عطا فرما دیجئے, اے اللہ اپنی شان کو ہماری نگاہوں میں, اے اللہ حقیقی معنوں میں بڑھا کر دیجئے, اے اللہ آپ کی ذات کے اوپر جیسے کہ آپ کے انبیاء علیہ السلام نے بھروسہ کیا تھا, اے اللہ آج کل موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے ہیں, اے اللہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے ان کے توکل کی تربیت کری تھی, اے اللہ بڑھتے بڑھتے ان کو آپ کے اوپر کیسا بھروسہ ہو گیا تھا کہ جب پیچھے ان کے سمندر تھا اور آگے ان کے فرعون کی افواج تھیں اور ساتھ ان کے اپنے خاندان والے ان کو ملامت کر رہے تھے کہ اے موسیٰ تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت میں آ کے پھنس گئے ہیں, اے اللہ اس وقت انہوں نے کیسا ڈانٹ کے جواب دیا تھا, کلا ہرگز نہیں بلکہ میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ یقیناً میری ہدایت کرے گا, وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا, اپنے اگلے عمل کے بارے میں مجھے بتائے گا کہ میں کیسے اس مصیبت سے خود بھی نکلوں اور اپنے پورے خاندان کو بھی لے کے نکلوں. اے اللہ ہمیں اس طریقے سے اپنے اوپر بھروسہ عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیجئے, اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ایسا تعلق عطا فرما دیجئے, اے اللہ کہ زمانے کی جتنی بھی گیدڑ بھکیاں ہو, اے اللہ ہمیں ڈرانے کے لیے وہ جو بھی طریقے استعمال کریں, اے اللہ ہم ہرگز نہ ڈریں, اے اللہ ہم ہرگز ان سے مرعوب نہ ہو, اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے اوپر یقین اطمینان عطا فرما دیجئے. اللہم انا نسألک نفسا بک مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اے اللہ, اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے, اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما دیجئے, اے اللہ آپ ہمیں قرضوں سے مرضوں سے, اے اللہ علت سے ذلت سے قلت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ دنیا کے غموں میں اے اللہ آسانی فرما دیجئے, دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہر پریشانی کے لیے اے اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائیے, اے اللہ آپ کے خزانے لا متناہی ہیں, اے اللہ آپ کے خزانوں کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں, اے اللہ ہم کیسے آپ کے ماننے والے ہیں کہ ہم ہر وقت اس خزانے سے محروم ہی دکھائی دیتے ہیں, ہر وقت ہی دنیا میں قلاش دکھائی دیتے ہیں, اے اللہ دنیا میں ضرورت مند دکھائی دیتے ہیں, اے اللہ اپنے خزانوں سے اے اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی اے اللہ ان نکی نکی خواہشات کو ان ضروریات کو اے اللہ پورا فرما دیجئے, اور اے اللہ ہمیں اپنے دین کی فکر کے لیے آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے, اے اللہ ہماری ذہنوں کو یکسو فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آراستہ فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرما دیجئے, اے اللہ مدد کے فیصلے فرما دیجئے, اے اللہ کہ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرمائیے, اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے, اے اللہ ہمیں غیرت دینی عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں حیا اور پاک دامنی عطا فرما دیجئے, اور اے اللہ جو ہمارے دشمن ہم سے اس غیرت کو چھین لینا چاہتے ہیں, اے اللہ ہماری عورتوں سے اس حیا کو دور کر دینا چاہتے ہیں, اے اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیجئے, اے اللہ ان کے ان تمام بدنیت بد اے اللہ ان کے فیصلوں کو, اے اللہ ان کے ان سب چیزوں کو خاک میں ملا دیجئے, اے اللہ ان کو رسوا فرما دیجئے, اے اللہ ان کو ناکام فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے, اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے, اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.